ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं उत्तराखंड पुलिस विभाग में उप महानिरीक्षक बरिंद्रजीत सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं वर्षा सिंह।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीन नए कानून, इनका उद्देश्य क्या है, इस सब पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं डीआईजी ट्रेनिंग पुलिस विभाग में बरिंद्रजीत सिंह। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
तो एक बहुत पुराना कानून था और अब उस समय तकनीक भी बदल गई है, एक तरह से सामाजिक व्यवस्था भी बदल गई है। तो अगर हम बात करें कि जैसे भारतीय नागरिक संहिता है तो इसमें नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसमें किस तरह के प्रमुख बदलाव हैं जो लोगों के लिहाज से होने लगे कि जरूर उनको जानकारी होनी चाहिए?
जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये सीआरपीसी को रिप्लेस कर रही है। उसका सीआरपीसी का सिद्धांत था कि जो अगर अपराध होता है तो क्या प्रोसीजर होगा उसको विवेचना करने का, क्योंकि ये लोगों की फ्रीडम से रिलेटेड सारे प्रावधान हैं, तो बिना प्रोसीजर के पुलिस या न्याय प्रणाली उसमें कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो इस प्रोसीजर में काफी चेंजेस किए गए हैं। इसमें पारदर्शिता लाना एक सबसे बड़ा चेंज है। जो पुलिस द्वारा पूर्व में जैसे कार्रवाई की जाती थी, किसी के घर में सर्च या सीजर की जो कार्रवाई की जाती, इसमें प्रावधान किया गया है कि उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्ड पुलिस द्वारा किया जाएगा, फिर वो मैजिस्ट्रेट के सामने भेजी जाएगी। इसी तरीके से जैसे सिटीजन है, पहले हम देखते थे कि थाना स्तर पर लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि घटना इस पुलिस स्टेशन की नहीं है, आप उधर जाइए, तो अब उसमें जीरो FIR का प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुलिस स्टेशन उसको मना नहीं करेगा, वो रजिस्टर करके संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज देगा। इसके बाद EFIR का प्रावधान किया गया है और तमाम कई इसमें बदलाव किए गए हैं। फॉरेंसिक एविडेंस का किया गया है, तकरीबन 35 ऐसे सेक्शन ऐड किए गए जहां टाइमलाइंस दी गई हैं कि इतनी देर में आप ये काम करेंगे, कोर्ट में केस जाएगा तो कितनी देर में वो कमिट करेंगे, कितनी देर में फ्रेम होगा चार्ज, तो तमाम ये टाइमलाइंस जो है वो स्पीडी ट्रायल में हेल्प करेंगी। फिर इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इसमें व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इसमें बताया गया कि एंटायर पूरी प्रोसेस जो इवन इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे और ट्रायल स्टेज पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं, तो लोगों का आना जाना कम होगा, असुविधा कम होगी, एविडेंस अच्छे से रिकॉर्ड होगी और फिर उसका डिनायल करना भी लेटर ऑन वो काफी मुश्किल होगा। और अगर जैसे कोई एक्सपर्ट है, उसने कोई केस किया है, तो अब उसका जो सक्सेसर है वो भी एविडेंस में बुलाया जा सकता है, तो इससे काफी प्रोसेसेस फास्ट होंगे और स्पीडी ट्रायल होगा और कन्विक्शन रेट्स बढ़ने में मदद मिलेगी।
ये विक्टिम सेंट्रिक होगा, न कि शासन पर, जो ब्रिटिश कालीन जमाने में जिस तरह था कि वो शासन को प्रभावित करने वाला उनके हिसाब से बना कानून था, तो कैसे हम ये प्रक्रिया को पूरी ज्यादा पारदर्शी बनाएगा, ये न्याय देने की प्रक्रिया को, वो किस तरह से इसमें आ?
तो इसमें अगर हम देखें कि विक्टिम सेंट्रिक ये कैसे है, जैसे मैंने सबसे पहले आपसे किया FIR जो सबसे बड़ा इसका मतलब ये पूरी प्रक्रिया ही उससे स्टार्ट होती है, तो उसको डिसेंट्रलाइज किया, मतलब उन्होंने कहा जीरो FIR की जा सकती है, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, अगर आपको मजबूरी है आप नहीं जा सकते तो संबंधित पुलिस स्टेशन उसको ट्रांसफर करेगा। EFIR का प्रावधान किया गया है, EFIR मींस आप इलेक्ट्रॉनिक मींस से भेज सकते हैं, पुलिस उसको रजिस्टर करेगी और 3 दिन में, जबकि उसमें कुछ राइडर्स भी हैं, बिकॉज ये आप किसी, अगर हम FIR दर्ज कराते हैं तो एक हिसाब से हम किसी को क्रिमिनल बना रहे हैं। हम अगर मेरे साथ कोई क्राइम हुआ है और मैं कहता हूं कि आपके ऊपर FIR दर्ज होनी है, तो इसके दो पहलू हैं, एक तो विक्टिम का भी पहलू है और आपका भी पहलू है, आप क्रिमिनल बन गए, मैं विक्टिम बन गया, तो इसमें यह है कि वो 3 दिवस में आके उसको पुलिस स्टेशन में साइन करेगा जो भी EFIR भेजता है, और डिपेंडिंग अपॉन जैसी भी उसकी गंभीरता है पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको कंक्लूजन पे लेके जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक सिटीजन को या विक्टिम को अधिकार जो है एक मिला है, सुविधाजनक मिला है, पूर्व में भी था लेकिन अब इसको सुविधाजनक बनाया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे विवेचना है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अब विक्टिम को इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि मतलब डिफरेंट स्टेजेस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो विक्टिम को इसकी प्रोग्रेस बताएगा कि उसके केस में क्या हो रहा है। अगर थर्ड हम चलें तो पहले पूर्व में प्रावधान है कि FIR की प्रति दी जाएगी, अब उसको चार्जशीट की भी कॉपी दी जाएगी कि उसका रिजल्ट क्या है, फिर उसको जजमेंट की भी कॉपी दी जाएगी कि उसके केस में क्या हुआ, फिर वो अपना प्राइवेट वकील भी एंगेज कर सकता है, अगर केस उसका छूट जाता है तो अपने आप अपील भी कर सकता है, तो उसको अधिकार दिए गए हैं काफी इसमें कि वो मतलब अपने, क्योंकि वो विक्टिम है, जस्टिस उसके लिए है और जो गवर्नमेंट है वो डेटरेंस के लिए, इसको स्टेट गवर्नमेंट डेटरेंस के लिए, तो पहले जैसे पूर्व में पूरा एकाधिकार स्टेट का था, तो अब जो है एकाधिकार जो है गवर्नमेंट ने इसको विक्टिम्स को ये राइट्स दिए हैं कि अपने केस के लिए वो ये सारा चीजें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हम कहें कि कोई केस विड्रॉ होना है, स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ भी करती केस, तो ऐसी केसेस में जो विक्टिम है उससे भी राय ली जाएगी। तो ये काफी मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। जब ये फील्ड में आएंगे तो काफी जो विक्टिम है, जब वो लोग हैं वो एम्पावर्ड फील करेंगे। विक्टिम की डेफिनेशन को भी बढ़ाया गया है इसमें, उसके लीगल जो हेयर्स हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनको जोड़ा गया ताकि अगर विक्टिम को कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसकी कॉम्पनसेशन या उसको परस्यू करने के लिए वो लोग लीगली इसके अब अधिकार उनके पास दिया गया है। तो ऐसे काफी सारे प्रावधान इसमें इम्पोर्टेंट किए गए।
मैं ये भी चाहूंगी कि जो टाइमलाइन की अभी हम बात कर रहे थे, वो टाइमलाइन अगर आप थोड़ा विस्तार से बता सके, क्योंकि ये टाइमलाइन एक बड़ी समस्या रही है। क्योंकि कई बार होता है कि कई कई साल तक वो मामले पेंडिंग रह जाते हैं और एक व्यक्ति अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंदर रह जाता है, ऐसा कई बार आया है, कई कई सालों तक हुआ है।
जी जी।
तो टाइमलाइन क्या है इसकी?
तो टाइमलाइन देखिए ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेजेस होती हैं। जैसे क्राइम हो गया तो उसके बाद पुलिस सीन ऑफ क्राइम पे जाएगी, सीन ऑफ क्राइम में उन्होंने कहा है कि आप रिकॉर्डिंग करेंगे जो भी सीन ऑफ क्राइम है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, उसके बाद अगर आप सीजर कर रहे हैं तो वो करके आप 48 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाएंगे जो भी आपने कार्रवाई की। तो एक चेक हो गया कि आप बहुत डिले नहीं कर सकते, इतनी देर में आपको वो चीज वहां पहुंचानी है पूरा प्रोसेस खत्म करके। फिर पूर्व में भी जैसे टाइमलाइन थी कि जो छोटे अपराध हैं उसमें 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है, जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित हैं उसमें भी टाइमलाइन 2 मंथ्स की दी गई है, तो वो मतलब टाइमलाइन स्ट्रिक्टली अडेयर करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो इवन जो पुलिस कस्टडी रिमांड है, पहले 15 दिवस में ही पूरा करना होता था, अब उसमें भी पुलिस को अधिकार दिया गया कि मान लिया उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई ऐसे तथ्य आता है तो वो उसको दोबारा से 40 और 60 डेज का टाइम उसमें बढ़ाया गया है। वो पीरियड नहीं बढ़ाया गया है, मतलब पुलिस 15 दिन तक ही उसको रख सकती है, लेकिन जो 15 दिन है वो तोड़ के भी ले सकती है कि भाई मुझे आज कुछ नई डिस्कवरी हुई तो मैं आगे उसको यूज कर सकता हूं, क्योंकि क्यूज के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन है, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी जरूरी है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट प्रावधान किए गए हैं जिसकी वजह से पहले मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज तथ्य पूरे नहीं होते तब तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। तो ये काफी सारी चीजें जैसे विटनेस की स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो विक्टिम्स ऑफ जो रेप हैं उनकी चॉइस की जगह पे उनके बयान ले सकते हैं, उनके गार्जियन के सामने ले सकते हैं, तो काफी एनेबलिंग प्रोसीजर्स किए गए हैं।
जैसे हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को की नॉलेज में होने चाहिए, जो बहुत कॉमन है, तो क्या महत्वपूर्ण बदलाव न्याय संहिता में?
न्याय संहिता में कुछ सेक्शंस जो थे उसमें मतलब कवर्ड नहीं थे पहले, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम है, अब लोग संगठित अपराध करने लग गए तो उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो इसके लिए सभी स्टेट्स ने, सभी ने तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे स्टेट में उसके लिए गैंगस्टर एक्ट लागू है यूपी का, महाराष्ट्र में उसमें मकोका है ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता थी। गैंग्स बन गए, क्राइम सोफिस्टिकेटेड हो गया, तो उसको पकड़ने के लिए इसको परिभाषित करना, इसमें सजा को बढ़ाना, ये सब इम्पोर्टेंट था, तो इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम को डाला गया। उसके बाद अगर हम देखें टेररिस्ट एक्ट है तो यूएपीए उसमें लागू है, लेकिन अगर उसकी विवेचना यूएपीए में एनआईए या बाकी एजेंसीज करती हैं तो इसको वहां पे लाके एक प्लेटफॉर्म के रूप में दिया गया है कि सभी लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि यूएपीए सब नहीं पढ़ते हैं लेकिन भारतीय न्याय संहिता सभी पढ़ेंगे, तो उसमें कॉमनैलिटी हो सकती है। लेकिन अब ये रेगुलर कोर्स में आ गया, जैसे मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो यूएपीए ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है लेकिन भारतीय न्याय संहिता तो होगा, तो अब उनको ये पता चल जाएगा कि ये मतलब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनके डिटेल्ड प्रोविजन वहां हो सकते हैं लेकिन यहां उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जा सकती है इन धाराओं के बारे में। हमने देखा मॉब लिंचिंग एक इशू था, तो मॉब लिंचिंग को अब इसमें डिफाइन कर दिया, आपको स्पेसिफिक इसकी धारा है तो आप इसमें जाके उसको बुक कर सकते हैं, आपको अपराध का स्वरूप नया मिल गया। ऐसे ही अब आजकल अगर टेक्नोलॉजी को देखें तो लोग देश के बाहर रह के क्राइम कर रहे हैं जो यहां पे है ही नहीं लेकिन क्राइम यहां पे करा रहे हैं, तो उसके लिए सेक्शन 48 ऐड किया गया है कि उनको भी अपने कानून के दायरे में लेके जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनको भी हम इसमें ले सकते हैं, उनको भी एक्यूज बना सकते हैं अगर ऐसा कोई अबेटमेंट करता। तो ऐसे मतलब एक सक्षम कानून जिसको हम कहें कि बनाने की कोशिश की गई है कि उसमें कोई लूप होल ना रहे।
बहुत सारी जगहों पे जैसे जन आंदोलन होते हैं, कोई विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो क्या उन जगहों पर भी या सोशल मीडिया पे कई बार होता है कि कोई वीडियो चल जाता है जो लोगों से जुड़ी बातें हैं आमतौर पे, तो क्या वहां पर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों की नॉलेज में होनी चाहिए कि क्या नहीं करना है कम से कम?
कानून जो पढ़ना है वो सबकी जिम्मेदारी है। अगर मैं कल को कोई अपराध करूं और मैं कहूं कि मुझे तो इसका पता ही नहीं था, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो जहां तक मुझे लगता है सभी लोगों को, क्योंकि ये सभी भारत के कानून हैं, हम इस देश के वासी हैं, तो हमको इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम इसके बारे में देखें। अगर आप इसी में किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, चाहे यूट्यूब पे चले जाएं, गूगल में चले जाएं, तो व्यापक लोगों ने, चाहे वो अधिवक्ता वर्ग हो, जुडिशियरी हो, पुलिस के अधिकारी, वो लगातार अपने अपने प्रयास से इसको बता रहे हैं। मतलब आप वहां जा सकते हैं, अगर आपको, जैसे मैं किताब की बात करूं तो हमने उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट में डाली है, कुछ भी छुपाया नहीं है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप भी वो हैंडबुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको पुराने कानून आते हैं तो हमको सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा। अधिकार तभी हम ले पाएंगे जब हम उनको पढ़ेंगे। अगर मुझे अधिकार ही नहीं पता तो फिर मैं उसका फायदा कैसे।
कई बार होता है कि जैसे आवश्यक सेवाएं बाधित हो रही होती हैं अगर किसी प्रदर्शन की वजह से, तो वो नए कानून के तहत इसके प्रावधान सख्त किए गए हैं।
उसमें ऑलरेडी जो हमारे जो लोकल कानून होते हैं, जैसे हमारा पुलिस एक्ट है, उसमें जो एसपीज होते हैं, कलेक्टर्स हैं, उनको अधिकार दिए जाते हैं। लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं तो अनुमति लेके करते हैं, तो उनके पास अनुमति अगर तोड़ते हैं तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें कि क्रिमिनल्स के लिए क्या एक्शन लिया जाता है, तो क्रिमिनल्स के लिए जो है अब एक बड़ा प्रावधान किया गया है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का। तो अगर उन्होंने बहुत अर्जित कर ली है प्रॉपर्टी और हमारी उसमें आता है कि इसकी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, ये क्राइम से ही कर रहा था, तो उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, तो ये काफी बड़ा उस पर इफेक्ट आएगा। इवन उसका जो अंश है या पूरी प्रॉपर्टी जो है वो विक्टिम को भी दी जा सकती है, जो इसका भुक्तभोगी था। लोग करोड़ों के स्कैम करते थे और छोटी सी सजा पाते थे, तो अब जो है उसकी प्रॉपर्टी सीज भी हो सकती है और विक्टिम को बांटी भी जा सकती है, तो प्रावधान हो गया।
एक छोटे मामलों में था कि कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया है,
जी
वो कम्युनिटी सर्विस किस तरह से काम करेगा?
देखिए, कम्युनिटी सर्विस हम देखते हैं कई बार, मतलब हम लोग भी जैसे अगर कोई गलती करते हैं तो हम भी कहीं धार्मिक स्थल पे जाके सेवा कर लेते हैं, लोग कन्फेशन करते हैं, तो ऐसी कम्युनिटी सर्विस छोटे अपराध के लिए, जैसे चोरी अगर 5,000 से कम की है या कोई आपने सरकारी आदेशों की अवहेलना की है, छोटे जो किस्म के अपराध हैं, 5-6 अपराध जो इसमें लिस्ट किए गए हैं, तो उसमें कम्युनिटी सर्विस है जो डिसाइड किया जाएगा। आप किसी एनजीओ के साथ या कोई ऐसा चाइल्ड केयर होम, वहां साफ सफाई कर सकते हैं, तो एक अच्छा प्रावधान है जहां, मतलब एक रिफॉर्म के हिसाब से, तो ऐसे हमारा जो सिटीजन जो एक बार भटक गया तो वापस हमारे मेन स्ट्रीम में आ सकता है।
किस तरह से असर आप देखते हैं कि कैसा असर पड़ेगा जब ये कानून अमल में आएंगे, तो किस तरह के बदलाव की उम्मीद और कैसे इसको स्केल अप करेंगे हम?
जो कानून है इससे एक तो सभी को टेक्नोलॉजी से अपडेट होना पड़ेगा, चाहे वो पूरी प्रणाली है नीचे जो सीन ऑफ क्राइम पे गया है वहां से लेके और जजमेंट तक जो है सब अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में आएगा, तो सारी जो कार्य प्रणाली है वो अपडेट हो जाएगी। वो टेक्नो सेवी एक हिसाब से सबको बनना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो हम टेक्नोलॉजी से दूर रहते थे, क्योंकि इसमें जो है सप्लाई भी डॉक्यूमेंट की कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीन से। इवन जैसे हम अगर देखें कि एक मेजर पार्ट पुलिस का काम है कि आप समन और वारंट और ये सारी चीजें सर्व करो, लेके आओ लोगों को, तो समन भी अब भेजे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन से, तो अगर हम इसको करेंगे तो काफी काम हमारा कट ऑफ होगा और हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सेकंड जो इसका फायदा होगा वो स्पीडी ट्रायल में होगा, सब चीजें फास्ट हो रही हैं तो डेट्स भी जल्दी लगाई जा सकती हैं केसेस की, स्पीडी ट्रायल होगा। थर्ड, अगर हम साइंटिफिक एविडेंस और ये सारी कलेक्ट कर रहे हैं तो केस मजबूत होगा, एविडेंस जल्दी होगी, तो जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, सजाएं मिलेंगी, और जो उसका डेटरेंस का इफेक्ट आना था सोसाइटी में, जो लोग सोचते थे क्राइम करके अब 20 साल बाद मैं कौन सा इस जन्म में देखूंगा, मतलब हो सकता है मैं खत्म हो जाऊं या बेल पे रहूं, वो भी मतलब उनको दिखने लगेगी स्पष्ट कि हाँ भाई सजा इट इज कमिंग फॉर मी, तो ये इससे डेटरेंस भी होगा और जो विक्टिम है उसको भी अपने जीवन काल में दिखेगा कि भाई हमने इसको सजा मिल गई, क्विक जस्टिस जो है वो भी हमको मिलेगी।
आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे उत्तराखंड पुलिस विभाग में उप महानिरीक्षक बरिंद्रजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी वर्षा सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।